मुझे अब शक नहीं रहा कि रवान बख्श एक पेशावर जासूस है।
जब उसका रिकॉर्ड चेक कर रहे थे तब तो इतने यकीन से बात नहीं की थी। जला मोईद के रिकॉर्ड में क्या नजर आ गया जो नतीजे पर पहुंच गए?
वो खुद ही अब ये काम अंजाम देने की कोशिश में है।
तुम्हारी इन बातों से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि टारगेट किलिंग भी जाली और मंसूबाबंदी के तहत थी कि रवान बख्श को प्रमोशन मिल जाए।
और उसे मिल गई।
सुनो, अगर मैं कहूं मुझसे गलती हो गई तो माफ कर दो।
खुदा हाफिज़।
जाले अभी बात नहीं कर सकता, मैं तुमको बाद में फोन करूंगा।
मोहसिन, फोन मत काटो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला?
मैं इस वक्त घर पर हूँ, नाहिद के पास बैठा हूँ।
उसे बताया नहीं ना?
तुम खुद ही उसे बता दो।
क्या? मैंने और मोहसिन ने शादी कर ली है।
जाले, तुमसे शादी से पहले मैं सोच रहा था कि यह बात बड़ी आसानी से नाहिद से कह दूंगा। मैं सोच रहा था जब दो तालीम याफ्ता इंसान ये समझ जाएं कि अब मजीद एक साथ जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है तो आसानी से वो बैठकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं اور بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں زالے، میں جو سوچ رہا تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ شادی کی بات بتانا بہت مشکل تھا، اگر تم نے بڑھ کر میری مدد نہ کی ہوتی تو میں خود نہیں بتا سکتا تھا۔ کام آسان کر دیا زالے، ایک مہینے سے میں سو نہیں پا رہا ہوں، تمہاری یاد مجھے سونے نہیں دیتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم یہ محسوس کرو کہ ایک شادی شدہ مرد کی دوسری بیوی ہو، میں نہیں چاہتا تھا کہ 19 سال کی تنہائی کے بعد اب جب تمہیں اس تنہائی سے نجات ملی ہے تو سوچو کہ تم نے غلط فیصلہ کیا۔ یہ سوچو کہ اپنی زندگی کے لیے جس مرد کا انتخاب کیا وہ ایسا مرد نہیں تھا جیسا تم سوچتی تھی۔ زالے، جب تک میں زندہ ہوں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اب تم ہی میری زندگی ہو، تم ہی میرا سب کچھ ہو۔ اگر میں نے تم سے جھوٹ بولا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا تو مجھے معاف کر دو۔ بعض اوقات اسے کھونے سے بچانے کے لیے جیسے چاہتی ہو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اب میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ زالے، کبھی جھوٹ تم سے نہیں بولوں گا، اب تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔
نہیں، مجھے مزہ آیا، بہت چالاک آدمی ہے۔ 400 فائلیں کھول دی ہیں کہ میڈم میت کو کوئی شک نہ ہو جائے، شاباش۔
اس سے ہمارا کام مشکل ہو گیا ہے۔
اگر میں کمپیوٹر کا پورٹ تھوڑی دیر کے لیے کھول پاتا
تو ایسا کام کرتا ہے کہ اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے وہ فائل کھول لیتا ہے جس پر اس نے زیادہ وقت دیا ہے۔
پورٹ تو ہم نے خود ہی بند کر رکھے ہیں۔
ٹھیک ہے تو آؤ،
ذرا ٹھہرو۔ ابا تھوڑی دیر کے لیے سسٹم چیک کر سکتے ہو۔
پورٹ مل گیا، اس نے اس آدمی کی فائل کاپی کی ہے، سعید برازندے،
انجینئر سعید برازندے، 35 سال عمر، شادی شدہ، اصفہان سے تعلق ہے، تہران میں رہتا ہے، انسداد تقریبی فعالیت کمیٹی کا عہدیدار ہے، خریدے گئے درجنوں پارٹس میں ٹیمپرنگ کا انکشاف کرنے والا شخص۔
اور ہم کہہ رہا تھا کہ اسے قتل کرنے کا منصوبہ ہے جو دوسروں سے الگ ہے۔
بالکل صحیح کہا، برازندے سائنٹسٹ نہیں ہے لیکن فنی، صنعتی اور الیکٹرانک پرزوں کا ماہر ہے، ادارے کی طرف سے خریدے گئے سارے پرزے اس کی منظوری کے بعد ہی استعمال ہوتے ہیں۔
اللہ رحم کرے، ہم بڑے پیچیدہ معاملے میں داخل ہوئے ہیں۔ ناصر، تمہارا پلان کیا ہے؟ کیا ارادہ ہے تمہارا، بتاؤ۔
مجھے لگتا ہے اس برازندے کو میں نے کہیں دیکھا ضرور ہے، اس کی شکل بڑی بڑی آشنا ہے۔
مجھے نہیں لگتا کہیں اسے دیکھا ہوگا، کل رات تک میں نے بھی صرف اس کا نام اور اس کی تعریف سنی تھی۔
مجھے یقین ہے میں نے کہیں دیکھا ضرور ہے، پورا یقین ہے۔ تم جب زیادہ سوچتے ہو تو تمہیں بھوک نہیں لگتی؟
کیوں نہیں؟
تو کیا کہتے ہو، آملیٹ میں مزہ آئے گا؟
اگر تندوری روٹی ملے تو ضرور۔
یاد اللہ ہمیشہ تندوری روٹی رکھتے ہیں۔ آ جاؤ۔
سنو ناصر، اگر ہم نے روان بخش کی نگرانی نہ کی ہوتی تو اس نام تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔
حقانی کو بتاؤ،
اس سے پتہ چل جائے گا۔
آ جاؤ۔ یاد اللہ، یاد اللہ، یاد اللہ صاحب، یاد اللہ، یاد اللہ،
بھیج دیا؟
جو اطلاعات تمہیں چاہیے تھی میں نے بھیج دی، ایک گھنٹے میں اس کی اور اس کی بیوی کی نئی فوٹو تمہارے لیے بھیج رہا ہوں۔
بہت شکریہ۔
میں آفس میں ہوں، باہر نہیں جاؤں گا، کچھ کام ہے تو فون کر لینا۔
ٹھیک ہے،
بھیج دیا ہے۔
ہاں، ناصر دیکھ رہا ہوں، اس پرزے کو دیکھو، اس میں ایک چھوٹا سوراخ ہے، اس کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ جب یہ سسٹم کے اندر پہنچ جاتا ہے تو حدت کی وجہ سے آسانی سے پگھل جاتا ہے، یہاں گڑھا بن جاتا ہے اور ایئر لینے لگتا ہے، نتیجے میں خالی جگہ ختم ہو جاتی ہے اور سینٹری فیوج مشین کریش ہو جاتی ہے۔
یہ انکشاف برازندن کیا ہے؟
ہاں، یہ بھی اس کا ایک اہم کارنامہ تھا، غیر اسٹینڈرڈ پارٹ کا انکشاف۔ دیکھ رہے ہو کیسے ٹوٹا ہے؟
ہاں،
جب کسی سسٹم میں کوئی خراب پرزہ لگ جاتا ہے تو کام میں باقی پرزوں سے پیچھے رہتا ہے اور نتیجے میں پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔
انجینئر برازندے سائبر سیفٹی کی ماہر ٹیم کے سربراہ ہیں، شریف انڈسٹریل انڈسٹری سے فارغ التحصیل ہیں، وہ اب تک تقریباً 80 افیکٹڈ پارٹس، 16 آلودہ محلول اور 7 طرح کے غیر معیاری خام مال کا پتہ لگا چکے ہیں جو بیرون ملک سے خرید کر لائے گئے تھے اور انہیں ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم، نتنز ایٹمی پلانٹ اور الیکٹریکل انڈسٹری میں استعمال کیا جانا تھا۔
دیکھا نا، الگ طرح کا انسان ہے۔
یہ وہی بات ہے جو آورام نے کہی تھی، یہ شخص جو دوسروں سے الگ ہے۔
اس کا فرق اس کی مہارت اور غیر معمولی ذہانت میں ہے۔
یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اب تک درجنوں توصیفی سند صدر جمہوریہ، وزراء اور اساتذہ سے حاصل کر چکے ہیں۔
ہاں دیکھ رہا ہوں،
یہیں سے سارا معاملہ خراب ہوا، اسی وجہ سے وہ نظروں میں آ گیا۔
ناصر، ان میں سے کوئی بھی توصیفی سند اس کے نام پر نہیں ہے۔
اچھا، تو احسان پور نے بہت زبردست کام کیا ہے۔
السلام علیکم۔ السلام علیکم، ناشتے میں کیا لیں گے؟
تندوری روٹی ہے یا نہیں؟
جی ہاں، ابھی لایا ہوں۔
ایک آملیٹ تیار کر دو، زبردست آملیٹ ہونا چاہیے، زبردست۔
ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ناصر کہ ان کے لیے برازندہ کی شناخت بہت زیادہ اہم تھی۔
تو روان بخش نے اس طرح ان کے لیے بہت بڑی خدمت انجام دی ہے
اور ملک کے ساتھ بہت بڑی غداری۔
تو جب یہ معاملہ ہے تو شاید وہ روش جو روان بخش کے بارے میں اپنائی بالکل مناسب نہیں ہے۔
یعنی اسے جو چارہ بنایا تھا؟
ہاں۔
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। कहाँ हो?
अरे देखो हाशिम, फौरन कपड़े पहनो और तेजी से इस एड्रेस पर आ जाओ।
एड्रेस? जरा रुको, मैं कलम कागज ढूंढ लूँ, बेहतर है मैं लिख लूँ।
कागज कलम की जरूरत नहीं, अपने जहन में बैठा लो।
अपने जहन में? तुम कैसी बातें कर रही, मेरी याददाश्त अच्छी होती तो आज मेरी ये हालत होती? मेरी याददाश्त कभी अच्छी नहीं रही।
मैं बहुत चाहता था, कोशिश भी करता था, लेकिन याद नहीं कर सकता था। वो क्या था वो शेर जिसे मैं कभी याद नहीं कर पाया? वो जो शेर है
पत्थर और उकाब के बारे में है वो शेर।
तो क्या तुम्हें कुछ पता है? शेर सुनाने बैठे हो?
तुम जाओ, जाकर कागज कलम लेके आओ, जल्दी करो।
ठीक है, अभी लाता हूँ।
इंजीनियर सईद बराजंदे,
एक मुनफरिद इंसान सनती शोबे का।
क्या बात हुई, इस बार किसी साइंटिस्ट को नहीं चुना?
ये शख्स भी किसी साइंटिस्ट से कम नहीं है, बहुत ज़हीन आदमी।
इसका नाम किसने जाहिर किया, किसने दहशत गर्दों को इतला दी?
किसी गैर ने नहीं, उसी शख्स ने जिसकी जान तुमने बचाई।
तो फिर रवान बख्श को आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते?
अभी उसका वक्त नहीं आया है, शायद किसी काम आ जाए।
लेकिन यह भी तो मुमकिन है वो गद्दार कभी भी फरार हो जाए।
तो फिर आप किस मरज की दवा है? तुम में से एक एक आदमी का फर्ज है कि उस पर नजर रखे, वो हरगिज़ फरार ना होने पाए।
आप लोगों की जिम्मेदारी है कि रवान बख्श पर गहरी नजर रखें।
तो शुरू से ही उसे सिक्योरिटी क्यों नहीं दी?
सिक्योरिटी देते तो भाग जाते, फिर रवान बख्श या उसके जैसे किसी आदमी की जरूरत न रहती, वो खुद ही ये काम कर लेते।
हमारे सामने एक अहम प्रॉब्लम है और हम इसका आसान हल तलाश कर रहे हैं।
देखो, मुझे मालूम है कि आप में से हर एक यही सोच रहा है कि हम बराजंदे को चारे के तौर पर इस्तेमाल करें ताकि दहशतगर्द टीम को फौरन गिरफ्तार किया जा सके। मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि इस तरह की प्लानिंग का इम्कान 0%।
इस तरह तो नहीं चल सकता है। दिफाई पोजीशन में कब तक वो साजिशें रचते रहे, दहशतगर्द भेजते रहे, हम दिफाई पोजीशन में रहें?
रसूल ठीक कहता है, हमें दिफाई पोजीशन से बाहर निकलना होगा।
उन्हें समझा देना चाहिए कि गुंडागर्दी और बदमाशी का जमाना गुजर चुका है।
जज्बात में ना आइए, जो भी टारगेट किलिंग में लग जाए वो कोई हार चुका है। आप अपनी सारी तवज्जो बराजंदे पर रखिए।
पहला काम यह है कि बराजंदे की ताजा तरीन पोजीशन मालूम कर ली जाए, वो भी बहुत खामोशी के साथ।
यानी किसी सर्च टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है?
अब आप इससे मतलब ना रखिए, आप सबका फरीजा है, एक एक का फरीजा है। अलग अलग वजो खता में जाओगे, उनके घर और दफ्तर के आसपास सबकी मुकम्मल निगरानी।
देखिए, बराजंदे का दफ्तर इदारे के बाहर एक वर्कशॉप के अंदर है, अलबत्ता इदारे में उनका आना जाना रहता है।
यानी हम बराजंदे को नहीं बताएंगे?
मैं भी इस बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन उनकी बीवी की कुछ दिनों से तबीयत खराब है, डरता हूँ कि तबीयत और ना खराब हो जाए। सोच रहा हूँ कोई और तरीका निकले जिससे तबीयत खराब ना हो।
देखिए, मैंने और नासिर ने इस बारे में बहुत गौर किया है, ये मामला बहुत पेचीदा मामला है। आपकी जिम्मेदारी है कि बहुत ज़्यादा तवज्जो से अपना काम करें।
हमारा काम इसी वक्त शुरू हो रहा है, गौर से सुनो कि तुम्हें क्या करना है। जाकर बराजंदे के ऑफिस के इर्द गिर्द के तमाम CCTV कैमरे, यानी हाईवे ट्रैफिक कैमरे, पड़ोसियों के लगाए हुए कैमरे, जहाँ कहीं भी कोई कैमरा लगाओ, सबकी फिल्मों को एक एक करके चेक करोगे। मोटरसाइकिल, गाड़ी, कोई आदमी अगर नजर आए उसे भी नज़र में रखोगे। तुम अपने आदमियों को साथ लेकर जाओगे, जहांगीर की भी मदद जरूर लेना। मुझे ये सब नहीं सुनना है कि शायद हो सकता है, ऐसा लगता है, अंदाजा है। तुम लोगों से मुझे ठोस इत्तलात मिलनी चाहिए, ठोस इत्तलात।
इसी जगह साइड पर रोक लो, इस काली गाड़ी के पीछे। शुक्रिया, ये लो। अस्सलामुअलैकुम।
अलैकुम अस्सलाम।
बाप रे, तुमने मिलने के लिए कौन सी जगह चुनी है? तुमको पता है शूश का रास्ता कितना लंबा है? मैं सिर्फ मोटरसाइकिल से हूँ तब पहुँच सका। मैं तो चाहता था कि टैक्सी से।
हुई?
मैं तकरीर नहीं कर रहा था, मैं तो बस बता रहा था कि यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये नहीं हो सकता था कि गरीब जगह?
नहीं, नहीं हो सकता।
ओहो, तुम तो नाराज हो गई। मैं
तुम्हें शायद अंदाजा ही नहीं है कि हम किस पोजीशन में हैं।
क्या जुर्म कर रहे हैं? पोजीशन कैसी?
नहीं, लेकिन असल में ये तय पाया है कि हम एक मुजरिम का पीछा करेंगे।
तो कोई बात नहीं, हमने कोई जुर्म नहीं किया। फ्रॉड तो वो आदमी है जिसने जुर्म किया।
हम कानून के आदमी भी तो नहीं हैं। हमें बस इस शख्स का पीछा करना है और फिर उसे कानून के हवाले करना है।
तो इस वक्त हम भी एक सरकारी अहलकार की मदद कर रहे हैं। इस पर सरकारी अहलकार को चाहिए कि हमारा शुक्रिया अदा करे।
ये लो पहले इसका फोटो तो गौर से देख लो।
इसका फोटो है?
हाँ ये लो, ये उसकी तस्वीर है।
ये शक्ल से तो मुजरिमों जैसा नहीं लगता, कैसा आदमी
है? इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस घूम टहल कर ये मालूम करना है कि किस जगह से जाता है, किस रास्ते से आता है, इस घर में रहता है कि नहीं, इन चीजों से हमें इत्मीनान हासिल करना है, इसके अलावा हमसे कोई मतलब नहीं है।
कहीं हमें धोखा तो नहीं दिया गया?
क्या बात है, शक में पड़ गए?
नहीं भाई, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरे लिए तो आपसे आशनाई ही बहुत है। बहुत से लोग करोड़ों खर्च कर देते हैं कि उनका साथ ही मिल जाए, इसके लिए बहुत खर्च करते हैं। इस काम में मैं आपके हमराह रहा, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ रहा। बहुत से अफराद इतने खुशकिस्मत नहीं हैं।
अच्छा तो खुशकिस्मत आदमी, ये बताओ तुम्हें ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो कहाँ रहता है? हाँ
मुझे तो तुमने बताया ही नहीं।
तुम ज़रा पीछे मुड़ कर देखो, ये जो बिल्डिंग है ना, ये टावर 11वें फ्लोर पर रहता है, उसके पास पेजो गाड़ी है।
पिजो 405? उसकी गाड़ी इतनी मामूली क्यों है? क्रिमिनल होकर ऐसी गाड़ी रखता है?
बेवकूफ बनाने के लिए।
शाबाश शाबाश, क्या बात है। ये लोग जो क्रिमिनल होते हैं, फ्रॉड करते हैं, हमेशा इसी तरह के पुराने मॉडल की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई उनके बारे में शक ना करे। शाबाश।
आमतौर पर 7:30 से 8 बजे के दरमियान घर से बाहर निकलता है।
अब तो 8:20 हो चुके हैं, कहीं चला तो नहीं गया?
नहीं, मैं 7 बजे से उसके घर के सामने खड़ी हूँ, घर से बाहर नहीं निकला है।
तो कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? शायद घर से बाहर
मुझे पता
निकले?
नहीं, ये तो कल मालूम होगा। हो सकता है कुछ मुश्किल में आ गया हो।
तो कहाँ जा रही हो?
वापस चलेंगे अपने घर, और कहाँ जाए।
अगर वो आदमी आधे घंटे 1 घंटे के बाद बाहर आए तो?
पता नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे कहा गया है कि 7:30 से 8 बजे के दरमियान उसके घर के पास खड़े रहें, इससे ज्यादा वहां मत खड़े रहना।
अच्छा, तुमने मुझे तो बताया ही नहीं था।
तुम अब यहां से जा सकते हो, खुदा हाफिज।
रुको तो, खुदा हाफिजी मत करो।
क्यों, क्या कहना चाहते हो?
जरा ठहरो, जल्दबाजी ना करो, तलाश कर लूं जरा।
किसको तलाश कर लो?
अपने आप को।
जल्दी करो हाशिम, या तो फौरन बताओ या तो कल बताना, मैं बुरी जगह पर खड़ी
हूं। नहीं, अगर अभी नहीं बताया तो कल बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा।
ठीक है, बताओ, जल्दी बताओ।
एक सवाल। नैन्सी ने पहले मुझसे कहा था कि तुम गैर शादीशुदा हो, है ना? लेकिन ये नहीं बताया था कि पहले तुम्हारी शादी हो चुकी है या नहीं।
माफ करना, मेरा पहले कोई शौहर था या नहीं था, इससे तुम्हारा क्या मतलब है?
क्यों नहीं, अब बहुत मतलब है।
क्यों, अब ऐसा क्या हो गया कि तुम पूछ रहे हो?
शौहर था या नहीं था?
नहीं तो पहले ये बताओ कि ऐसा क्या हो गया कि तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो?
छोड़ो, बताने की जरूरत नहीं, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे सवाल किया। हाँ अच्छा, शौहर था भी तो वो माजी की बात है ना।
नहीं, शादी नहीं की मैंने, पहले कभी शादी नहीं की। अब तुम्हें इत्मीनान हो गया?
बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या हो, आप कोई और सवाल पूछना चाहते हो?
नहीं।
फिर जाओ।
सुनो, तुम मुझसे शादी करोगी?
फौरन गाड़ी से नीचे उतरो, मैं तुमसे कह रही हूं गाड़ी से नीचे उतरो। कितने ढीठ आदमी हो तुम हाशिम, गाड़ी से नीचे उतरो। हीट इंसान,
हाँ
अच्छा तो अगर मीटिंग कैंसिल हो गई है तो मैं आकर आपकी बीवी को ले जा सकती हूँ? नहीं कोई बात नहीं है, कोई जहमत नहीं है बराजिंदे साहब, मैं अगर अभी निकलूं तो एक घंटे में वहां पहुंच जाऊंगी। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा तो मीटिंग अब कब रखी जाए? ठीक है तो फिर मैं बाकी लोगों को फोन कर देती हूँ और फिर मीटिंग का दिन और टाइम मालूम कर लूंगी आपसे। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज़ बराजिंदे साहब।
सलाम अलैकुम।
कहाँ थे?
फ्रांस के एम्बेसी में।
अपने ऑफिस नहीं आए, चले गए एम्बेसी में?
उसकी वजह मैंने लिख दी थी, तुम्हारे कमरे के दरवाजे पे चिपका दी थी। तुमने कागज नहीं पढ़ा?
जी नहीं। इसकी बजाय मैंने ये SMS पढ़ा। मैं तुम्हें सुकून से नहीं रहने दूंगी, कुछ ऐसा कर दूंगी कि सुकून से ना रह पाओ, कुछ ऐसा कर दूंगी कि तुम खुद ही इस इदारे से भाग जाओ। क्या हमने ये तय किया था मोहसिन? ये तय हुआ था कि मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनूंगी? ये तय किया था कि तुम्हारी बीवी की सौकन बनूंगी? मैं 19 साल तक तुम्हारे इश्क के सहारे रही, मैंने शादी नहीं की, मैं तुमको सरजनिश नहीं करूंगी, मैंने खुद ही ऐसा किया, मैंने तुम्हारी बातों पर एतबार कर लिया। मुझसे कहा था कि मैंने अपनी बीवी को समझा दिया, वो या तो तलाक लेकर चली जाएगी या फिर जो हालात हैं उनसे समझौता करेगी और अपनी जिंदगी गुजारेगी। तुमने कहा था कि तुम दोनों के दरमियान कोई दिलचस्पी नहीं रह गई, कहा था या नहीं?
नहीं है, नहीं रह गई है।
नहीं रह गई?
नहीं।
ये तुम दोनों की दिलचस्पी की निशानी नहीं है? आखिर क्यों झूठ बोलते हो?
ये मुझसे नाहिद की मोहब्बत की निशानी नहीं है, ये तुमसे उसकी नफरत की निशानी है। मैंने तुमसे झूठ कहा था। इस 19 साल के अरसे में नाहिद समझ गई थी कि तुम्हारा साया उसकी जिंदगी पे पड़ रहा है, समझ गई थी कि मैं तुम्हारा प्यार नहीं भुला सकता, समझ गई थी कि उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, समझ गई थी कि सिर्फ बच्चों के खातिर उसके साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ, सब कुछ समझ गई थी, बस वो यकीन नहीं करना चाहती थी। ये सारी हरकतें इसलिए हैं कि मुझसे और तुमसे इंतकाम ले सके। नाहिद को मालूम है कि जब वो तुम्हें परेशान करेगी तो मुझे तकलीफ होगी, मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं अभी जा रहा हूं एहसानपुर के दफ्तर, मैं सब कुछ उसे बता दूंगा।
क्या फोन करके एम्बुलेंस बुला लूं?
नहीं, तबीयत इतनी खराब नहीं है। मेरा ख्याल है कि कुछ मीठा खा लूं तो हालत बेहतर हो जाएगी।
मैं अभी आपके लिए शरबत लाती हूँ।
मैं अभी लेकर आ रहा हूँ।
रवानबर साहब,
आप परेशान ना हो, मैं उसका शौहर हूँ। जाले, जरा उठो। लो इसे पियो। एहसानपुर नहीं थे, आज नहीं आएंगे। मैं जाकर नाही से बात करूंगा। अब मुझे फैसला करना होगा।
क्या हुआ आपको?